तात धर्मस्थ। प्रहर रात्रि बीत जाने पर वसुमित्रा के चतुस्साल में समाज का अंत हुआ। अभ्यागत अपने रथों अश्वों शिविकाओं पर आरूढ़ होकर अपने अपने स्थानों की ओर चल गए। धर्मस्थ की प्रपौत्री दिव्या की शिविका के वाहक भी दूसरी अभ्यागतों को विदा होते देखकर आलस्य छोड़ कुमारी के प्रसाद से लौटने की प्रतीक्षा में उठ खड़े हुए। दिव्या और उसकी दासी धाता न लौटी। वसुमित्रा के प्रतिहारियों ने सिंहद्वार के तुरंत पर प्रकाश बुझाकर द्वार मुनने का आयोजन किया। दिव्या के शिविका के वाहकों ने प्रतिहारियों से धर्मस्थ की प्रपौत्री के न लौटने के विषय में जिज्ञासा की। कुमारी के चतुस्साल अथवा उद्यान में कहीं भी न पाए जाने के समाचार से विक्षिप्त और अत्यंत आशंकित होकर भय से कांपते हुए वाहक धर्मस्थ के प्रसाद में लौटे। कुमारी के विलंब तक न लौटने से अंतःपुर में चिंतित पितृव्यों और देवियों को वृद्ध दास तारुक द्वारा रिक्त शिविका आ जाने का समाचार मिला। आर्य प्रबुद्ध शर्मा, विनय शर्मा, धृति शर्मा और अंत में पंडित विष्णु शर्मा अष्टानागार में पहुंचे। उन अनेक देवियां भी चिंता से आशंकित मुद्रा में साथ थी। कुछ ही समय में तात धर्मस्थ, महादेवी और शिशुओं के अतिरिक्त संपूर्ण परिवार अष्टानागार में एकत्र हो गया। अष्टानागार, चतुस्साल, उद्यान और सिंहद्वार के भृत्यों, दासों और प्रतिहारियों से पंडित विष्णु शर्मा ने जाना कि सूर्यास्त से कुछ पल पूर्व कुमारी दिव्या धासी धाता सहित देवी मल्लिका अथवा वसुमित्रा के संगीत समाज में सम्मिलित होने के लिए प्रसाद से शिविका पड़ गई थी। महादेवी की विक्षिप्त तथा अस्वस्थ होने और शेष परिवार के नवजात संतान के उत्सव में व्यस्त होने के कारण कुमारी के लौटने में विलंब की सूचना निवेदित न की जा सकी। पंडित विष्णु शर्मा ने तत्काल द्रुतगामी अश्वों के लिए आज्ञा दी। कुमारी की खोज में अश्वारोही दल की वसुमित्रा, देवी मल्लिका, पृष्ठ प्रसाद, श्यामन शर्वार्थ के प्रसाद आदि अनेक स्थानों की ओर सरपट दौड़ पड़े। शिविका वाहक और दासी धाता की पुत्री युवती दासी छाया विष्णु शर्मा की आज्ञा से तत्काल बंधन में ले लिए गए। चारों शिविका वाहकों को पृथक पृथक ले जाकर उन्हें पीड़ित करना से जानने का आदेश उन्होंने प्रतिहारियों को दिया। भृत्य, दास, दासी और कंचुकी पृथक पृथक पंक्तियों में अपने दोनों हाथ घुटनों के सम्मुख फैलाए बैठे भय से कांप रहे थे। सशस्त्र पहाड़ी हाथ में कोड़े लिए उपस्थित थे। अनेक प्रसादों और भवनों में दासों के अनेक प्रकार के कठोर दंडों और पीड़ितों से परिचित होते हुए भी धर्मस्थ के प्रसाद में इस प्रकार के कांड की स्मृति किसी को न थी। एक घड़ी के व्यतीत होने से पूर्व ही सभी स्थानों से अश्वारोही असफल लौटाए। क्षोभ और अवसाद की घटा गहरी हो गई। शिविका वाहकों से कुछ भी रहस्य न पाकर विष्णु शर्मा ने प्रत्येक को काष्ठबद्ध करने की आज्ञा दी। दिव्या के साथ धाता की अनुपस्थिति के कारण पंडित विष्णु शर्मा ने धाता की पुत्री छाया के अभिसंधि में सम्मिलित होने की शंका की। उन्होंने कुल वधुओं को अपने कक्षों में लौट जाने का आदेश दिया। स्त्रियों के चले जाने पर उन्होंने दो प्रतिहारियों वक्कट और ध्वज को आज्ञा दी। दासी धाता की पुत्री छाया को विशेष पीठ कर रहस्य जाना जाए। छाया ने आंसुओं से भीगा मुख पृथ्वी पर रखकर त्रस्त और कंपित स्वर में गिड़गिड़ाते हुए अज्ञान प्रकट कर करुणा की भीख मांगी। विष्णु शर्मा के संकेत से दोनों प्रहरी छाया को दोनों बाहुओं से उठा कर ले गए। जाते हुए प्रतिहारियों को विष्णु शर्मा ने पूरे आदेश दिया रहस्य प्रकट करने पर दासी को उपस्थित किया जाए। अंतःपुर की दासियों से उन्होंने जाना। दासी आशा भी अध्यान में कुमारी का पथ्य लेकर उनके कक्ष में गई थी। दो प्रतिहारियों को उन्होंने आशा को ले जाकर उससे भी रहस्य जानने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात प्रबुद्ध शर्मा और धृति शर्मा अपने कक्षों की ओर चले गए। विष्णु शर्मा जादू पर कोहनी और हथेली पर थोड़ी टिकाए पिथिका पर चिंतामग्न बैठे रहे और समीप आर्य विनय शर्मा खड़े थे। पिथिका की दोनों और दोनों प्रतिहारी आदेश की प्रतीक्षा में उपस्थित थे। शेष भृत्यों, कंचुकियों और दास दासियों के निर्दिष्ट सेवा कार्य में जाने की आज्ञा हुई। दो घड़ी समय बीत जाने की सूचना अलिंद के सम्मुख लटके घड़ियाल पर पड़े प्रहार पर द्वारा प्रतिहारी दो बार दे चुका था। दो बार वे प्रतिहारी को भेजकर छाया से जाने गए रहस्य के विषय में जिज्ञासा कर चुके थे। उन्होंने प्रतिहारी को पुनः एक बार और समाचार के लिए भेजा। उत्तर प्रत्येक बार दकार में आने पर वे खिन्न होकर मौन बैठे थे। सहसा अंतःपुर की यवनी प्रहरी की पुकार सुनाई दी। परिजन सादर सावधान, तात धर्मस्थ पधार रहे हैं। चिंता से झुका मस्तक उठाकर विष्णु शर्मा ने देखा। दो कंचुकियों के कंधों का आश्रय लिए तात श्रेष्ठ अत्यंत कष्ट से पगधरते चले आ रहे हैं। विष्णु शर्मा ने आसन छोड़ नतमस्तक को प्रणाम कर तात से आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। कंचुकियों के कंधे के आश्रय ही खड़े रह तात ने प्रश्न किया, मैंने कक्ष से आर्ड क्रंदन का चित्कार सुनाया, दासी छाया कहाँ है, उपस्थित की जाए। आज्ञा पाकर एक प्रतिहारी तुरंत अष्टानागार से चला गया। तात के चरण और ग्रीवा निर्बलता से कांप रहे थे, परंतु वे उसी प्रकार कंचुकियों के कंधों से के आश्रय ही खड़े रहे। कुछ क्षण पश्चात प्रतिहारी ने लौट कर धर्मस्थ के सम्मुख जादू पृथ्वी पर टिका सिर झुकाया प्रार्थना की, आर्य भट्टारक अभयदान ने, दासी छाया नहीं है। कंपित स्वर में तात ने प्रश्न किया, दासी छाया नहीं है, आर्य भट्टारक अभयदान दिए, दासी छाया जीवित नहीं है। ग्रीवा झुकाए प्रतिहारी ने समाधान किया, तात्कासुर स्तब्ध हो गया, उनके जादू हिल गए, दोनों कंचुकियों ने उन्हें बाहों में लेकर पीतिका पर टिका दिया। श्वास की गति अति तीव्रता और अवरोध के कारण वे कुछ बोल न सके। विष्णु शर्मा, विजय शर्मा और कंचुकी सिर झुकाए पीतिका पर घिराए। वृद्ध कंचुकी विलहर दात का सिर अपने जादू पर लिए था। कंचुकी विलहर के संकेत से दूसरा कंचुकी तुरंत दौड़कर आशव और जल ले आया। कुछ बिंदु आशव मिश्रित जल धर्मष्ट के ओष्ठों में डालने से उनके कंठ की घड़घड़ाहट दूर हुई। विष्णु शर्मा को समीप आने का संकेत कर वे चीत और कंपित स्वर में बोले, पुत्र, अन्याय का प्रतिकार करने के आवेश में तुमने यह अन्याय किया है। इस अन्याय के प्रतिकार का प्रयत्न एक दूसरे अन्याय का आरंभ होगा। पुत्र, प्रतिकार और प्रतिहंसा न्याय नहीं है। तुम्हें बेटी के चले जाने पर आक्रोश है, वह किसके अपराध से गई? तुम्हारे, मेरे, तुम्हारे समाज के अनुशासन से। पुनः उसका कंठ घड़घड़ा कर हिचकी आने लगी। विलहर ने पुनः कुछ कुछ आसव मिला जल उसके मुख पे दिया। तात अत्यंत कठिनाई से फिर और भी चीत स्वर में बोले, छाया को उसकी माता के स्वामी स्नेह का परिणाम, पुत्र, मुझे खोकर तुम्हारे इस अन्याय का प्राश्चित हो। विलहन ने पुनः कुछ मुद्दे आशव धर्मष्ट के मुख में दिया। हिचकियों के बीच अवसर में तात ने अस्पष्ट शब्दों में कहा, पुत्र, बेटी पर आक्रोश न करना। विलहन के और जल देने पर वे निगल न सके। श्वास की गति सरल करने के लिए विलहन ने उसकी ग्रीवा सीधी कर दी और स्वयं श्वास रोके अपलक धर्मष्ट के नेत्रों की दृष्टि लगाए थे। तात का माथा बिस्तर पर रख विलहर दोनों हाथों से सिर पीट कर चित्कार कर उठा। आष्टनागार पूरा परिवार किष्टी पुरुषों से भर गया। प्रसाद में क्रंदन का चित्कार उठ खड़ा हुआ। तात के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, कुलवधुए, भृत्य, कंचुकी, दास दासी और प्रतिहारी सब रो पड़ रहे थे। हेमंत के पाले से निबिड़ आकाश में नक्षत्र भी अस्थिर और द्रवित जान पड़ते थे।